بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے. سورہ مائدہ بھی مدنی سورت ہے اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں جو شریعت کا بیان ہو رہا تھا، قانون اسلامی کا بیان ہو رہا تھا، اس کی گویا کلمینیشن اس میں ہو جائے گی اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کی تکمیلی سورت ہے. مائدہ اس کا جو نام ہے، اس سورہ کے آخر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. مائدہ کہتے ہیں خان کو، خان نعمت کو یا دسترخوان کو. اور قرآن مجید میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ کوئی نمائندہ نہیں ہوتے اس کے مضامین کے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس سورت میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہے یا کوئی لفظ آیا ہے تو اس کو ایک علامت کے طور پہ اس کا نام بنا دیا جاتا ہے. اور شروع میں اس طرح کہا جاتا تھا کہ یہ وہ سورت ہے، سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائیں کا ذکر کیا گیا. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. سورہ توبہ، اس کا نام سورہ برات بھی ہے. سورہ اخلاص، اس کا نام سورہ توحید بھی ہے. تو بس یہ سمبولیکلی بس ایک علامت کے طور پہ سورت کا نام ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں وہ مضمون بیان ہوا ہے. اس کے 18 رکوع ہیں، یہ 16 رکوع ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے کانٹریکٹس کو پورا کرو. عقد کہتے ہیں گرہ کو. ہمارا جو دین میں جو ایمانیات کا کانٹینٹ ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جس پہ گرہ ڈال دی گئی، ایسی معاملات جس پر انسان غور نہیں کرتا، جن کو ری وزٹ نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے طے کر دیتا ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں. تو اسی سے یہ ہے کہ جو تمہارے عہد و پیمان ہوتے ہیں، جو آپس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، جو مویشی ہیں، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کے سنا دیا گیا، جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ حرام ہیں. اور وہ تذکرہ ہو چکا کہ وہ خنزیر حرام ہے اور میتا حرام ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ وہ جانور کہ جو تم حلال جانو شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، یعنی بہت سے وہ چوپائے کہ جو حلال ہیں لیکن وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں اس وقت جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، اس میں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں. بہیما کا لفظ آتا ہے جانوروں کے لیے، خاص طور پہ مویشیوں کے لیے. اور اسی سے یہ اب ہم یبہم ابہام، چونکہ یہ جانور ایسے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے لیکن انسانوں کے لیے وہ قابل فہم نہیں ہوتا، مبہم ایکسپریشن ہوتا ہے. اپنے ہم جنسوں کے لیے تو اس میں کوئی معنی ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ان کو بہیما کہا جاتا ہے. اور انعام یہ چوپائے ہیں. اور یہ چار جوڑے ہیں، آگے سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہوگا. سمانیت ازواج، چار ہیں نر اور مادہ، آٹھ ہو جاتے ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ چار ہیں، نر مادہ ملا کے آٹھ ہو جاتے ہیں. اور ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. وللشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینوں کی. حرام مہینے چار ہیں، تین مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ چار محترم مہینے. وللہدیہ، اور وہ جانور कि जो कुर्बानी के लिए हरम के लिए ख़ास कर लिया गया है, वलल कलाइद, और वही जानवर के जिनके हरम के लिए ख़ास कर लिया जाता है, हज उम्रे में साथ ले जाया जाता था, तो उनके गले में पटा डाल दिया जाता था या जूतों का हार डाल दिया जाता था, जिससे ये वाज़ हो जाता था कि ये कुर्बानी के जानवर। वला आमीन अलबैत अलहराम, और देखो वो लोग के जो बैतुल हराम के आज़मीन हैं, उसका कसद करने वाले हैं, उनकी राह भी ना रोको, उनके रास्ते में भी रुकावट ना डालो। ये कौन लोग हैं? यबतगून फजलम में रब्बिहिम व रिद्वाना, जो तलाश करते हैं अपने रब का फजल और उसकी रज़ा। वइज़ा हललतुम फस्तादू, और जब तुम हलाल हो जाओ यानी एहराम से निकल जाओ तो अब तुम शिकार कर लो। अब फस्तादू जो है ये अमर का सीगा है, और आम तौर पे कहा जाता है कि अल अमरु लिल वुजूब, अमर वुजूब के लिए होता है, लेकिन हमेशा वुजूब के लिए नहीं होता, कभी इस्तेहबाब के लिए भी होता है और कभी इबाहत के लिए होता है। यहाँ जो शिकार का हुक्म है ये इबाहत के लिए है, कि जो पाबंदी तुम पर आयत की गई थी हालत एहराम में, वो एहराम से निकलने के बाद तुमसे उठा ली गई है, तो अब अगर तुम जो है एहराम खोल दो तो अगर शिकार करना चाहो तो कर लो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू, और देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम उनको रोको मस्जिद हराम से, अन तअतदू, उन पर ज़्यादती करते हुए। ये बहुत अहम हिदायत है, आगे जाकर दोबारा इसको दोहराया जाएगा कि मुसलमान जो हैं वो दूसरों पर ज़्यादती नहीं करते, अगर उनके साथ ज़्यादती की जाए तो उसका बदला ज़रूर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़कर ज़्यादती नहीं करते। अब ख़ास तौर पे इस तरफ इशारा है कि अरे मुसलमानों, जब तुम 6 हिजरी में जाने लगे थे जो है उम्रे के लिए, तुम्हें रोक लिया गया था, तो अगर अब ये लोग मुसलमान हो जाएं और उसके बाद ये उम्रे के लिए आना चाहें तो इनको रोको नहीं, और ख़ास तौर पे उन लोगों का तस्करा है जो मुसलमान हो जाएं, वरना ज़ाहरी बात है जो लोग मुशरिक रहें उनके बारे में हुक्म ये वाज़े आगे जाके दे दिया जाएगा सूरह तौबा में कि ये जो मुशरिकीन हैं ये नजिस हैं और ये बैतुल हराम के पास भी ना फटकें इस साल के बाद, अब ये यहाँ ना आए। लेकिन ज़ाहरी बात है वो लोग तो वही हैं ना जिन्होंने रोका था, अब वो मुसलमान हो गए हैं, तो अब उनसे बदले ना निकालना कि अब उनको रोकने लगो। व तआवनु अलल बिर्रि व तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये बहुत अहम हिदायत है। और देखो बाहम एक दूसरे के साथ तआवुन करो नेकी और वफा के कामों में और तकवा के कामों में, और आपस में मदद न करो गुनाह के कामों में और जुल्म और ज़्यादती के कामों में। नेकी कामों में एक दूसरे की इआनत करो, एक दूसरे का दस्त बाजू बनो, और जो बुरे काम हैं उनमें एक दूसरे की इआनत न करो। वत्तकुल्लाह, और देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहो। इसी को असल में असबियत कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असबियत जाहिली इसी को कहते हैं कि इंसान अपने कबीले का साथ दे और वो कहे कि मेरा कबीला चाहे हक पर हो चाहे ना हक हो, चाहे वो जुल्म करे चाहे ज़्यादती करे, मुझे उसका साथ देना है। और अल्लाह के नबी ने उसके लिए मिसाल दी है कि वो तो ऐसी ही मिसाल है कि तुम किसी ऊँट की दुम को पकड़ लो और फिर वो ऊँट किसी जो है वो गड़े में जा गिरे तो तुम भी उसकी दुम पकड़ के उसमें जा गिरो, ये नहीं है। अपनी कौम का साथ देना चाहिए लेकिन हक पर, खैर पर। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम्हारे लिए हराम ठहराया गया है मुर्दार। वद्दमु, और खून। वल्लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और उस जानवर, वो जानवर भी हराम किया गया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। वल मुनखनिकतु, अब आगे कुछ ख़ास तरह के जानवरों का तस्करा है कि वो जानवर के जो हलाल हैं, मसलन बकरी है या गाय है या ऊँट है, अगर वो खुद से मर जाए, ज़िबा करने से पहले मर जाए किसी भी वजह से, तो वो जानवर हलाल नहीं है। अब उसकी तफसील है। वल मुनखनिकतु, जो गला घुटने से जानवर मर गया। वल मौकूज़तु, और जो चोट लगने से मर गया। वल मुतरद्दियतु, और कोई किसी ऊंची जगह से गिरने से मर गया। वन नतीहतु, या कोई सींग लगने से मर गया। वमा अकल सुबू, और जिसको किसी दरिंदे ने खा लिया। इल्ला मा जक्कई तुम, मगर वो कि जिसको तुम ज़िबाह कर लो, जिसका तुम तज़किया कर लो। यानी अगर चोट लगी है किसी जानवर को, सींग लगने से, ऊपर से गिरने से, दब लगने से, या कोई दरिंदे ने उस पर मुँह मारा है, अगर तुमने उसको पाया इस हाल में कि वो ज़िंदा था, उसमें ज़िंदगी की रमक थी, और तुमने उसको प्रॉपर तरीके से ज़िबाह कर लिया, तो अब जायज़ है। तो कहा कि वरना अगर इस तरह किसी चोट लगने से या दरिंदे के खाने से उसकी जान निकल गई इससे पहले कि तुमने उसको ज़िबा किया है, तो वो जानवर चाहे हलाल ही क्यों ना हो वो तुम्हारे लिए हराम हो गया। तो ये मुर्दा की गोया मैता की तफसील बयान की गई। ममा ज़ुबिहा अला नुसुबीन, और वो जानवर भी तुम्हारे लिए हराम कर दिए गए हैं जो किसी स्थान पर, बुत पर जो है वो ज़िबा किए जाते हैं, बुतों को खुश करने के लिए, किसी मज़ार वाले को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा जुई के लिए अगर कोई जानवर कुर्बान किया जाएगा तो चाहे वो अपनी ज़ात में हलाल हो वो हराम कर दिया गया। वह अंतस तकसीमु बिल अज़लाम, और ये कि जो तुम तकसीम करो जुए के तीरों से, यानी उनके यहाँ ये तरीका होता था कि वो जुआ खेलते थे तीरों पर और जो जानवर कुर्बान किया करते थे और फिर उस जानवरों को, उस गोश्त को लोगों में तकसीम कर देते थे। तो कहा कि जो इस तरीके से जुए के ज़रिए गोश्त तकसीम किया जाए वो भी तुम्हारे लिए हराम है। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब गुनाह के काम हैं। अल्यौम यईसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़्शौन, आज के दिन कुफ़ार नाउम्मीद हो गए हैं तुम्हारे दीन से, तो बस तुम उनसे न डरो बल्कि मुझ ही से डरो। अब ज़ाहिर बात है दीन के गलबे का वक्त आ गया है। ये जो आयतें हैं इनके बारे में ज़्यादा ख्याल यही है कि खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई हैं। अब दीन गालिब हो गया है, दीन इस्तिकरार पकड़ गया है सरज़मीन अरब पर और शरीयत जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। तो कहा कि पहले तवक्को थी मुशरिकीन को और कुफ़ार को कि हम इनको गिरा लेंगे, हम इनको दबा लेंगे या हम इनके साथ कोई गिव एंड टेक कर लेंगे, लेकिन कहा कि अब वो इससे मायूस हो चुका है। इस तरह शैतान के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शैतान कद ऐसा अन याबुदहुल मुसल्लून फ़ी जज़ीरतुल अरब, कि शैतान इससे मायूस हो गया है अब कि जज़ीरतुल अरब में जो नमाजी हैं वो उसकी बंदगी करेंगे। लेकिन वलाकिन तहरीश बैनहुम, शैतान इससे मायूस नहीं हुआ कि वो तुम्हें आपस में लड़वा दे, तुम्हारे दरमियान फूट पैदा कर दे। और ज़ाहिर बात है ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ही शुरू हो गया। अल्यौम यईसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़्शौन, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वह अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत, अपना एहसान तुम पर कामिल कर दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब किया है, पसंद किया है। अब ये आयत बहुत अज़ीमुशान आयत है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि ए मुसलमानों, तुम पर एक ऐसी आयत नाजिल की गई है कि अगर वो हम पर, यानी यहूद पर नाजिल की जाती तो हम उस दिन को अपने ईद का, अपनी सेलिब्रेशन का दिन बना लेते। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे याद है आज भी कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई थी। ये यौम अरफा पे नाजिल हुई थी, जो जुमे का दिन है, यानी मतलब गोया वो हमारे लिए भी ईद ही का दिन है, जुमे का दिन मुसलमानों की ईद का दिन। फ़मन इस्तुर्रफ़ी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल लिस्मिन, और जो कोई भी लाचार हो जाए, मुस्तर हो जाए, जिसकी जान पे बन आए, गैर मुतजानिफिल लिस्म, और वो इन जानवरों में से जिनका पीछे तस्करा हो रहा है कि जो हराम करार दे दिए गए हैं, अगर वो उनको थोड़ा सा खा ले लेकिन गुनाह की तरफ मायल ना हो, सरकशी से ना खाए, बस मजबूरी से, जबर से, कराहत से खा ले, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम, ए नबी, ये आपसे सवाल करते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए हलाल की गई है। कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, ए नबी फरमा दीजिए तुम्हारे लिए तमाम सुथरी पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई। यानी दीन का उसलूब ये नहीं है मामलात में और खाने पीने की चीज़ों में कि एक लिस्ट जो है वो कुरान मजीद में उतार दी गई कि फ़लाँ फ़लाँ डिशेज़ हैं, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें खाई जा सकती हैं, बल्कि ये बताया गया कि फ़लाँ चीज़ें नहीं खाई जा सकती, और कुछ चीज़ों का तस्करा नहीं किया गया। यानी तबीयी तौर पे इंसान को कराहत होती है, यानी बौलो बराज नहीं खाना, इसका कोई तस्करा कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन इंसान को तबीयी तौर पर उससे कराहत जो है वो नफूर पैदा होता है। तो कहा कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और जो तुमने, जो सिधाए हुए शिकारी जानवर हैं जो तुम दौड़ाते हो, छोड़ते हो शिकार के ऊपर, और तुमने उनको सिखाया हुआ है, तुमने उनको सुधाया हुआ है, सिखाया हुआ है उस इल्म में से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों को हराम ठहराया है, और आप अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि हर जो कुंचली वाले जो दरिंदे होते हैं वो हराम हैं, और हर वो परिंदे जो पंजों वाले होते हैं, पंजों से शिकार करते हैं, वो भी हराम है। लेकिन इसी तरीके से चीता हराम है और कुत्ता हराम है और इस तरह के तमाम जानवर हराम हैं। लेकिन इस तरह के जो जानवर हैं, अगर आपने इनको सिधाया हुआ है और इनके ज़रिए शिकार खेला जाता है, तो कहा कि फिर ये जायज़ है। यानी इनको छोड़ते वक्त जो है अल्लाह का नाम ले लिया जाए और फिर ये जो है वो शिकार को पकड़ के ले आएँ, और चाहे वो शिकार को पकड़ के ले आएँ तो चाहे उसकी जान भी चली जाए, यानी ज़िबा करने से पहले, तब भी ये जायज़ है। शर्त ये है कि वो जानवर जो उसको लेने गया है, जो शिकारी कुत्ता है या कोई चीता है या कोई बाज है, वो उसमें से कुछ खाए नहीं। अगर उसमें से कुछ खा लिया गया तो अब वो हलाल नहीं है, वरना चाहे वो ज़िंदा हालत में तुम्हारे पास लेकर आए, चाहे मुर्दा हालत में लेकर आए, अगर तुमने उसको छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया है तो फिर तुम उसको ज़िबा करके जो है तुम्हारे लिए हलाल है, तुम खा सकते हो। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो खाओ उसमें से जो वो तुम्हारे लिए रोक के रखें, पकड़ के ले आएँ, रोक के रखें, ख़ुद ना खाएँ उसमें से। वज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम ले लो, यानी अल्लाह का नाम पहले लेना है, छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लेना है और फिर ज़िबा करते वक्त भी अल्लाह का नाम लेना है। वत्तकुल्लाह, और देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत जल्दी करता है। अल्यौमा उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आज के दिन तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गईं। वत्तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और खाना अहले किताब का तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। वत्तआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। यानी अहले किताब यानी यहूद और नसारा, चूँकि असलन ये लोग ज़िबह करते हैं, तज़किया करते थे और अल्लाह का नाम लेते थे, इस वजह से इनके खाने को हलाल किया गया। और ज़ाहिर बात है ये वो जानवर है जो हमारे लिए हलाल है, यानी बकरी है, गाय है, ऊँट है, और वो किसी यहूदी ईसाई ने ज़िबह किया है बाकायदा प्रॉपर तरीके से, तो वो हलाल है। वरना अगर कोई हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई मसलन गल्ले की चीज़ है, दाल है, फल है, या इस तरह की कोई चीज़ें, वो सबकी जायज़ है। यहाँ तो उन चीज़ों का तस्करा हो रहा है कि जो अस किस्म ज़बीहा होते हैं। तो कहा कि अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए जायज़ है। ये और बात है कि ईसाइयों के यहाँ अब चूँकि इसका अहतमाम नहीं होता, अल्लाह का नाम तो शायद वो लेते हों लेकिन वो उसको ज़िबा नहीं करते प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिसको हमारे यहाँ झटका कहते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। इसीलिए यहूद के यहाँ, बहुत से यहूद के यहाँ जो है वो इसका अहतमाम होता है, और इसी वजह से बहुत सी जगहों पे जो यहूद का ज़बीहा है मुसलमान उसको तलाश करते हैं, चूँकि वो प्रॉपर तरीके से ज़िबाह करते हैं। वलमुहसनातु मिनल मुमिनात, और कहा कि वलमुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे लिए हलाल है निकाह के लिए पाक दामन अहले ईमान औरतें, और वो पाक दामन औरतें उन में से जिनको किताब दी गई है तुमसे पहले, यानी अहले किताब की जो ख़वातीन हैं उनसे निकाह करने की इजाज़त है। लेकिन एक शर्त यहाँ लगा दी, जो पाक दामन है, जो पाक दामन है उनमें से अफीफाएँ हैं उनके साथ तुम निकाह कर सकते हो, लेकिन जो मुसलमान औरतें हैं उनको इजाज़त नहीं है कि वो अहले किताब मर्दों से निकाह करें। कुछ लोग ये इश्काल उठाते हैं कि असल में ये उस ज़माने के अहले किताब थे, आजकल के अहले किताब तो मुशरिक हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो शिर्क आज पाया जाता है ईसाइयों के अंदर वही शिर्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पाया जाता है। इन्नल्लाह सालिसु सलासा लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस ये देखना चाहिए कि वो एथीस्ट तो नहीं है, यानी अगर वो वाक़ईतन कहती हैं कि हम ईसाई हैं, ईसाई होना ज़रूरी, अगर वो एथीस्ट हैं, मुल्हिद हैं, फिर जायज़ नहीं। और ये और बात है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने दौर हुकूमत में इसको पसंद नहीं किया था, और ख़ास तौर पे वो दौर के जब मुसलमानों का गलबा हो, मुसलमानों की हुकूमतें हों, उसमें तो फिर भी चलो इस तरह के मामलों की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अब चूँकि गलबा उनका है, आप ऐसे मुल्क में जाएँ जहाँ उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का समाज है, तो अगर इंसान वहाँ जाकर इसका फ़ायदा उठाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल रहा है अपने आप को भी, अपने ईमान को भी, और अपनी नस्लों के ईमान को भी। तो ये मतलब इबाहत ही है इसकी, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। सबसे अहम चीज़ क्या है कि इंसान को अपनी और अपनी नस्लों के ईमान की फ़िक्र करनी। इज़ा आतई तुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान, वो हलाल हैं तुम्हारे लिए अगर तुम उनके को उनके महर दो कैद निकाह में लाने के लिए, ना ये कि मस्ती निकालने के लिए और ना ही चोरी छुपी आशनाई करने के लिए। वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु, और जो कोई भी जिसने इनकार किया ईमान का तो उसने तो अपने तमाम आमाल को ज़ाय कर दिया। यहाँ ख़ास तौर पर अहले किताब की तरफ भी इशारा है, کہ ان لوگوں نے پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، اور ساری اپنی قرآن مجید آگے جا کر کہتا ہے نا کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا، اتنے بڑی محنت سے سوت کاتا اور اس کے بعد پھر اس کو تار تار کر دیا، تو کہا کہ اب ایمان لانے کے بعد کفر نہ کرو، جس نے یہ کیا تو اس کا پچھلا سارا ایمان، پچھلے پیغمبروں پر ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور ایسا شخص جو ہے آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگو جب جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم، ارجلکم کا جو عطف ہے وہ فغسلوا پر ہے، یعنی مسح کر لو سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، کہاں تک دھونا ہے پاؤں کو، ٹخنوں تک۔ اب یہاں پر جو ہے اجمالی طور پر وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چہرہ دھونا ہے اس میں جو تفصیل بتائی ہے، اس میں منہ دھونا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسح ہے سر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العضنان من الرأس، یہ جو کان ہے یہ بھی سر ہی کا حصہ ہے، تو گویا جب سر کا مسح کرنا ہے تو کانوں کا بھی مسح کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور پاؤں کو بھی دھونا ہے، اہل تشیع جو ہیں وہ پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہے پاؤں پہ مسح کرنے کی، لیکن اس صورت میں کہ جب پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہوں، ورنہ عام حالت میں پاؤں کو دھونا ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تمہیں جنابت لاحق ہو، حدث اکبر تمہیں لاحق ہو، تو پھر اچھی طرح پاک ہو جاؤ، یعنی پھر وضو کفایت نہیں کرے گا بلکہ غسل کرنا پڑے گا۔ اب اس آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے، تو یہ فضیلت کے لیے ہے، یعنی ہر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ وضو کرنا یہ استحباب میں تو ہے لیکن فرض نہیں ہے، اگر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تمہارا وضو پہلے سے ہے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آئے تم میں سے جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، یہ پہلے حکم آ چکا ہے، اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو، یعنی مٹی کو ہاتھوں اور جو ہے وہ چہروں پہ مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یعنی اگر تو یہ شرط لگائی جاتی کہ ہر صورت میں پانی میسر کرنا ہے چاہے مرض ہو اور چاہے پانی موجود نہ ہو تو بہت تنگی پیدا ہو جاتی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا ہو جائے، تو اگر فزیکل پانی نہیں بھی ہے تو مٹی لے لو، سمبولیکلی تمہارے اندر جو ہے ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہو جائے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پر اپنا احسان پورا کرے، اپنا فضل پورا کرے تاکہ تم احسان مانو اور شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے پختہ عہد ٹھہرایا، وہ عہد وہی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرنے لگو، تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، کہ وہ تقوی سے بہت زیادہ قرین ہے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، وہاں ترتیب فرق تھی، وہاں تک کونوں शुहदा बिलकिस्त कूनू, वहाँ पे अल्फाज आगे पीछे हैं, लेकिन यहाँ फरमाया कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ अदल व किस्त की गवाही देने वाले बनकर। और वहाँ ये कहा गया था कि चाहे ये गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे वालदैन के खिलाफ जाए, तुम्हारी औलाद के खिलाफ जाए। यहाँ एक दूसरी हिदायत है कि देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम अदल ना करो। आज मुसलमानों को इन दोनों जो अहकाम हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात तो ये कि असबियत पैदा ना हो कि चूँकि ये हमारे गरोह, हमारे मसलक, हमारी जमात के आदमी ने बात कही है तो हमें लाजमन इसको सपोर्ट करना है। और चूँकि फला बात एक ऐसे मसलक, एक ऐसी जमात या एक ऐसे मज़हब के आदमी ने कही है जो हमारा मज़हब और जमात और मसलक का आदमी नहीं है, तो हमें उसकी मुखालफत ज़रूर करनी है। कहा कि नहीं, बेइंसाफ़ी ना करो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पर ना उभारे कि तुम अदल न करो। वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन वअज्रुन अज़ीम। बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाएँ और नेक आमाल करें कि उनके लिए मग़फ़िरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को झुठलाया तो यही लोग हैं जो जहन्नुमी हैं, दोज़ख़ वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह की उस नेमत को, अल्लाह की उस फ़ज़ल को। इज़ हम कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अय्दियहुम फकफ़ अय्दियहुम अनकुम। जब कसद किया, इरादा किया कुछ लोगों ने कि वो तुम पे दस्त दराज़ी करें तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। वत्तकुल्लाह, और देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ताला पर ही एतमाद करना चाहिए अहले ईमान को। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ, उहद में ऐसा मौका पैदा हो गया था कि अगर जो है वो मुशरिकीन एक दफ़ा पूरा ज़ोर से हमला कर लेते तो मुसलमानों को और बहुत नुकसान हो जाता। ग़ज़वे अहज़ाब में ऐसा हो जाता, ग़ज़वे अहज़ाब के बाद कई मरतबा ऐसे मौके आए। फिर हुदैबिया में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि अगर उस वक्त जो है वो मुसलमानों से भिड़ जाते मुशरिकीन तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान होता। तो कहा कई मौक़ों पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों की कुव्वत को तुमसे रोका है। अब यहाँ से आगे बनी इसराइल की तारीख के कुछ वाक़ियात हैं। पीछे मुसलमानों से मीसाक और अहद का तस्करा था, अब उनसे तस्करा है। वलकद अख़ज़ अल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, और बेशक अल्लाह ताला ने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद। व बासना मिनहुम उस्नै आशरा नकीबा, और हमने उनमें मुकर्रर किए 12 सरदार, 12 कबीले थे, 12 कबीलों के सरदार हमने मुकर्रर किए। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या अल्लाह का साथ गैर मशरूत है? यानी यहूद को के साथ जो गलतफहमी हो गई थी, जो आज मुसलमानों को हो गई है कि बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो जाना बहुत काफ़ी है, तो यहूद का भी ये ख्याल था कि हम पैगंबरों की औलाद हैं, पैगंबरों की उम्मत में से हैं, तो बस अल्लाह ताला हर सूरत में हमारा साथ देंगे। तो कहा कि अल्लाह ताला ने ये कहा था, यकीनन कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन किस शर्त पर? लइन अकम तुम उस्सलाता, अगर तुम नमाज कायम रखोगे। व आतई तुम उस्ज़कता, और तुम ज़कात देते रहोगे। व आमन तुम बिरसूली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे। वअज़्ज़र तुमूहुम, और उनकी मदद और नुसरत करोगे। वअक़रज़तुमुल्लाह कर्ज़न हसना, और तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन दोगे, अल्लाह के दीन के रस्ते में माल खर्च करोगे। अगर तुम ये करोगे लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, तो मैं ज़रूर भी ज़रूर तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूँगा। वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और मैं ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें दाखिल करूँगा ऐसे बागात में जिसके नीचे नदियाँ बहती होंगी। फमन कफरा बाद अजाली का मिनकुम, इस सब के बाद भी जो कोई तुम में से इनकार करेगा, फ़कत गल्ला सवा सबील, तो बेशक वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा, सीधी राह से बहुत दूर हो गया। अब यहाँ पर भी वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला की मईयत खसूसी कब हासिल होती है, जब नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, पैगंबरों पर ईमान लाएं, उनकी मदद व नुसरत करें और अल्लाह के दीन के रस्ते में इन्फाक करें। फ़बिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम, सो इस वजह से कि उन्होंने हमारे अहद को तोड़ा। लअन्नाहुम, हमने उन पर लानत की, यानी उनके नक़्ज़ अहद की पादाश में दुनिया में हमने उनको ये सज़ा दी कि अपनी रहमत से दूर कर दिया, उन पर लानत की। व जालना कुलूबहुम कासिया, और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया, यानी दुनिया में इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं है कि इंसान संग दिल हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुनज़ौ रहमतु इल्ला मिन शकीयिन, बहुत ही बदबख्त आदमी होता है जिसके दिल से रहमत उठा ली जाए। وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے. تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے, اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے, تحریف کرتے ہیں لفظی بھی معنوی بھی. ونسوا حظا مما ذکروا بہ, اور وہ جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی, یاد دہانی کی گئی تھی, اس کے بڑے حصے سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا, بھول گئے اس بڑے حصے کو جس کے ذریعے ان کی نصیحت کی گئی تھی. تو کہا کہ جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانا وہ بھول گئے. ولا تزال تطلع على خائنة منهم, اور اے نبی آپ مسلسل ان کی طرف سے خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے, دغا بازی یہ کرتے رہیں گے. الا قلیلا منهم, سوائے ان میں سے تھوڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ایسا ہوا, تینوں قبیلوں سے آپ نے معاہدے کیے, مدینہ کی دفاع کی کا معاہدہ کیا اور باقی اور بہت سی چیزوں کا, لیکن ایک ایک نے وہ سارے توڑ دی. اور آج تک دیکھ لیجئے یہود کی طرف سے جو ہے نقض عہد جو ہے وہ بار بار ہوتا رہتا. فاعف عنہم وصفہ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصاریٰ اخذنا میثاقہم, اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں, ہم عیسائی ہیں, ہم سیدنا مسیح کے جو ہے مددگار ہیں. اخذنا میثاقہم, ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ, تو وہ بھی بھول گئے اس کا بڑا حصہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کرائی گئی تھی, انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, تو ہم نے ان پر لگا دی, ان پر تھوپ دی دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک. یعنی ایک تو یہود و نصارہ کے درمیان کینہ اور دشمنی پیدا کر دی, پھر اہل کتاب کے گروہوں میں تقسیم کر دی. یعنی ایک تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی ایک بڑی تقسیم تھی کہ جو ایک تو کیتھولکس تھے اور ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس تھے, ایک تو بڑی تقسیم یہ ہو گئی. اور ایک پھر 16ویں صدی عیسوی میں ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی پروٹیسٹنزم کی شکل میں ہوئی وہاں پہ, اور اس کے ذریعے تو بہت زیادہ فرقے وجود میں آ گئے. یعنی آج آپ دیکھیے کہ سینکڑوں ڈینومینیشنز ہوں گی. مسلمانوں پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت فرقے ہیں, اگر آپ عیسائیوں کی ڈینومینیشنز دیکھیں, ان کے مختلف فرقے دیکھیں, تو وہ تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں ہیں. اور اس میں بھی اب کبھی آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو کیتھولکس ہیں ان میں فرقے کم ہیں, پروٹیسٹنٹس میں فرقے زیادہ ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کیتھولک ایک روایت ہے, وہ اجماع پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ ایک ادارے پہ کھڑی ہوئی ہے. جبکہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ ظاہری بات ہے آزاد ہیں, اور وہ خود کہتے تھے کہ بھائی اب بائبل کو پڑھو اور پڑھ پڑھ کے جو چاہے کرنا چاہو کر لو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اہل سنت میں, اہل سنت کے اندر والجماعت میں تھوڑے فرقے ہیں, اور اہل بدعت اور اہل ضلال میں فرقے بہت زیادہ ہیں. جو سنت کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں تقسیم زیادہ نہیں ہے, جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں اس میں بجائے خود بیسیوں فرقے ہیں. تو کہا کہ اہل کتاب یعنی نصارہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے گا, ان کو جتا دے گا جو کچھ یہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں بہت کچھ وہ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سے معاملات میں تو وہ درگزر بھی کرتے ہیں. یعنی پیغمبر کی جو پروفیسیز چھپاتے تھے وہ واضح کر رہے ہیں, حلت و حرمت کے حوالے سے بہت سی باتیں تھیں وہ واضح کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے نور و کتاب مبین, اور ایک واضح کتاب. ایک رائے یہ ہے کہ جو واو ہے یہ تفسیر کی ہے, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے نور, اور وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین, ایک واضح کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر ہم سادہ معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں. سراجم منیرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے روشن چراغ. لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نور کا حصہ ہیں, یہ ظاہری بات ہے یہ خطرناک بات ہے, اور یہ عقیدے کی خرابی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اور اس کتاب کے ذریعے اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے. سبل السلام سیدھی راہوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلاتے ہیں سیدھی راہ پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی ان کے یہاں بہت سے تصورات تھے، ایک تو یہ ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک تصور یہ بھی تھا کہ مسیح کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہیں، انکارنیشن، گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئن، اے نبی ان سے پوچھیے کہ کس کا بس چلے گا اللہ کے ہاں، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیں کہ وہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ یعنی سیدہ مریم کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے جو زمین میں ہیں، یعنی وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنی موت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مسیح بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی والدہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی چہیتے ہیں، یعنی اللہ کی بیٹوں کی مانند ہیں اور اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں۔ کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بار بار جو ہے وہ انجیل میں یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ، تمہارا آسمانی باپ، یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے اللہ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، سب کے لیے استعمال کیا۔ تو انہوں نے اس سے سمجھ لیا کہ لٹرلی گویا یہ گویا اللہ جو ہے وہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے اور چہیتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی ان سے پوچھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی محبت کی بھی شرائط ہوتی ہے نا، اگر ظاہری بات ہے کہ تم اللہ کے بہت چہیتے ہو، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہو، تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے، تم بس بشر ہو اور مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی جو ان کے مابین ہے۔ وإليه المصير، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں بہت سی چیزیں رسولوں کے فترت کے زمانے میں۔ یہ فترت کہتے ہیں جب انقطاع تھا وحی کا، فترت وحی کا زمانہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، ان سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، تقریباً 600 برس کا فصل ہے، اس میں کوئی نبی نہیں تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا اور ڈراوا سنانے والا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو تحقیق آ گئے تمہارے پاس ایک بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، جب اس نے پیدا کیے تم میں انبیاء اور تمہیں بنا دیا بادشاہ، انبیاء بھیجے اور بہت سے انبیاء خود بادشاہ تھے، اور تمہیں زمین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی۔ وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا، اتنا نوازا اللہ نے تمہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، فلسطین کی سرزمین میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، بس تم تھوڑی سی ایفرٹ کرو اللہ تمہیں دے دے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو اپنی پیٹھ موڑ کر مت چلے جاؤ، और न लौटो पीठ मोड़ कर, फतन कलिबु खासिरीन, तो तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से। कालू या मूसा, उस मौके पर बनी इसराइल ने कहा, ए मूसा इन नफीहा कौमन जब्बारीन, कि वहाँ तो बहुत ही जाबिर और ज़बरदस्त कौम आबाद है, व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, और जब तक वो खुद वहाँ से न निकल आए, शहर को विकेट न कर दें, हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे। फ़ैन यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, हाँ अगर वो खुद ही शहर को खाली कर दें, हमें वॉकओवर दे दें, तो तब फिर हम दाखिल हो जाएंगे। ये जो कौम थी वहाँ पर, उसके बारे में बहुत अजीब अजीब इसराइली रिवायतें हैं कि औज बिन उनुक, उनका एक सरदार था, वो पता नहीं जो है वो 100 गज़ लंबा था, और उनका एक एक फल जो था उसमें 10-10 जो है अहले किताब के लोग खा लेते थे, एक आदमी की हथेली पे 15-15 लोग आ जाते थे। ये सब किस्से कहानियाँ हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी सब ने फरमाया कि आदम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो 60 हाथ लंबे थे, और उस वक्त से ले कर जो है आदम के बेटों की जो कद है वो कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब जो नॉर्मल कद है वो होता है। तो वैसे भी दिरायतन भी वो बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मुहम्मल है। वइन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, और कहा कि वहाँ पे तो बहुत जाबिद और ज़बरदस्त लोग हैं, और जब तक कि वो खुद ना निकल जाएं हम उसमें दाखिल नहीं होंगे। फ़ैन यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, अगर वो खुद खाली कर दें शहर को तो हम दाखिल हो जाएंगे। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب, तो कहा उन दो लोगों ने, जो उन लोगों में से थे जो अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह की नवाजिश का अंदेशा रखते थे, उन्होंने कहा ادخلوا عليهم الباب عليهم الباب, कि ऐ बनी इसराइल दाखिल हो जाओ इस शहर के दरवाजे से। فإذا دخلتموه, और अगर तुम दाखिल हो जाओगे, فإنكم غالبون, तो तुम ही गालिब रहोगे। दो लोगों ने समझाया, उनको बताया, उनके नाम भी आते हैं इसराइली रिवायात में, कि दो लोग थे, उन्होंने बताया कि देखो कम हिम्मती ना दिखाओ और सैयदना मूसा की बात मान लो और दाखिल हो जाओ इस शहर में। वअलल्लाहि फतवक्कलु इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम ईमान रखते हो। कालू या मूसा, बनी इसराइल ने कोरा जवाब दे दिया, कहा कि ए मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, कि हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे इस बस्ती में जब तक कि वो दुश्मन वहाँ पे रहते हैं वहाँ से खुद ना निकल जाएं। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तो जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे। ऐसी ही जब मुशावरत हुई थी बदर से पहले, उस मौके पर भी कुछ सहाबा ने उठकर यही बात कही थी कि अल्लाह के नबी आप परेशान ना हों, और आप हमें कहेंगे तो हम आपके लिए अपनी सवारियों को समुंदर में भी डाल देंगे, और हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो आपके लिए अपनी जान का आखिरी कतरा जो है वो भी बहा देंगे। फ़ैज़ा दखल तुमू फ़इन्नकुम ग़ालिबून फ़इन यख़ुरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, और कहा कि जब तक वो खुद वहाँ से नहीं निकलेंगे हम उसमें दाखिल नहीं होंगे। वइन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, और हम हरगिज़ उस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो खुद न निकल जाएं। फ़ैन यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, और अगर वो दाखिल वहाँ से निकल जाएं तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب, कहा उन दो लोगों ने जिनको अंदेशा था अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की नवाजिशों का, उनको डर था, उन्होंने कहा ادخلوا عليهم الباب, इस शहर के दरवाज़े पर दाखिल हो जाओ, हमला कर दो। फ़ैज़ा दखल तुमू फ़इन्नकुम ग़ालिबून, और अगर तुम उसमें दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। वअलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पे भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। कालू या मूसा, अबनी इसराइल ने उनको कोरा जवाब दे दिया, इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फ़ीहा, ए मूसा जब तक वो कौम वहाँ पर आबाद है हम तो उसमें हरगिज़ दाखिल होने वाले नहीं हैं। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तो जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे। और इसी तरह जब बदर से पहले मुशावरत हुई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कर रहे थे, और बार बार आपका रूए सखुन जो था वो अंसार की तरफ से था, अंसार की तरफ था, तो उनके सरदार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप जो फ़ैसला करना है आप कीजिए, जहाँ आप हुक्म करेंगे हम अपनी जान का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, और हम मूसा के साथियों की तरह नहीं हैं जिन्होंने ये कहा था कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे, हम तो आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي, سيدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہت بے بسی سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی कि ऐ रब बेशक मुझे इख्तियार नहीं है मगर अपनी जान का और अपने भाई हारून की जान का, फ़फ़रुक बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिकीन, तो ऐ अल्लाह तू जुदाई पैदा कर दे हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अरबईन सना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक फिर अब ये ज़मीन उनके लिए 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। यतीहून फ़िल अर्ज़, और ये सहराए सीना में मारे मारे फिरते रहेंगे। फ़ला तअसअल कौमिल फ़ासिकीन, तो अब आप ऐसे फ़ासिक लोगों पर जो है गम न कीजिए और यास मत कीजिए। उसके बाद 40 बरस के बाद फिर एक नई नस्ल पैदा हो गई, उसने फिर किताल किया और फिर उस सरज़मीन को फ़तह किया। वतलु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिलहक, ए नबी इनको सुनाइए आदम के दो बेटों का वाकया बिल्कुल सच्चाई के साथ। इस क़र्रबा क़ुरबानन, जब उन दोनों ने एक क़ुरबान पेश की, एक न्याज पेश की, क़ुरबानी पेश की। फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, तो कबूल कर ली गई उनमें से एक से और दूसरे से कबूल नहीं की गई। यानी ये हाबील और काबील आदम के जो दो बेटे हैं उनके वाक़े की तरफ इशारा है। क़ाल लअक़्तुलन्नक, तो जिसकी जो है वो कुर्बानी कबूल नहीं की गई यानी काबील, तो उसने हाबील से कहा कि मैं ज़रूर बिज़रूर तुम्हें कत्ल कर दूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तो हाबील ने कहा कि भाई इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। उस ज़माने में जिस तरह आगे भी होता था कि ये कुर्बानी पेश की जाती थी और आसमान से आग आती थी और इम्पीरिकली पता लग जाता था कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई किसकी नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़ौफ़ को देखा, हमारी कमज़ोरी को देखा और इस तरीके को ख़त्म कर दिया। अब ज़ाहिरी बात नहीं मालूम होता ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानी करते हैं किसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई किसके यहाँ कबूल नहीं हुई, लेकिन उस ज़माने में इम्पीरिकल था बिल्कुल। तो आसमान से आग आई और जो है वो हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबील की नहीं की गई। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, तो हाबील ने कहा कि भाई इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, तो अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह ताला जो है वो मुत्तकीन की कुर्बानी कबूल करता है। लईम बसत इलैय यदक लितक्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैक लियक्तुलक, और हाबील ने कहा कि अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओगे मेरी तरफ दस दराजी के लिए मुझे कत्ल करने के लिए, तो मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा कि मैं तुम्हें कत्ल करूँ। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, कि मुझे तो डर है अल्लाह ताला का कि जो तमाम जहानों का रब है। यानी मैं सेल्फ डिफेंस में भी हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। इस तरह अल्लाह के नबी सब ने फरमाया ना कि एक दौर आएगा फितने का और बहुत ज़्यादा फितना और फसाद बरपा हो जाएगा, हक बिल्कुल मुश्तबे हो जाएगा। उस मौके पर आपने फरमाया कुन का खैरी इबन आदम, ऐसे मौके पर आदम के बेहतर बेटा बन जाना। आदम का बेहतर बेटा कौन था? हाबील, जिसने सेल्फ डिफेंस में भी जो है हाथ नहीं उठाया। तो कहा कि जब फितना और फसाद बहुत फैल जाए फिर सेल्फ डिफेंस में भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और कोई आके मार देना चाहे तो मार देना चाहिए उसको। तो कहा कि इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, इन्नी उरीदु अन तबू अब इस्मी व इस्मी का फतकून अमिन असहाबिन नार, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लौटो मेरा गुनाह लेकर भी और अपना गुनाह भी लेकर। फतकून अमिन असहाबिन नार, और तुम हो जाओ जहन्नुमियों में से। वज़ालिक जज़ा उज़्ज़ालिमीन, और यही बदला है ज़ालिमों का। फतव्वात लहू नफ्सुहु क़त्ला अख़ीही, तो उसके नफ्स ने उसको राज़ी कर लिया अपने भाई के कत्ल पर। फ़क़त्लहू, और फिर उसने उसको कत्ल कर दिया। फ़असबह मिनल खासिरीन, तो वो हो गया खसारा पाने वालों में से। फ़बासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़, अब उसने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई की जो लाश है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करूं। तो कहा कि अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था, ज़मीन को खुरच रहा था। लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी, ताकि वो उसको दिखा दे कि वह अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। यानी वो भी जो है वो अपनी जो है किसी और जानवर को दफन करने के लिए ज़मीन खोद रहा था, तो कहा उससे पता लग गया कि भाई इंसानों को इस तरीके से जो है दफन किया जाता है, ज़मीन में डाला जाता है। क़ाल या वैलता अजस्तु अन अकून मिसल हाज़ल गुराब, उस मौके पर काबील ने कहा कि ए मेरे अफसोस, मैं तो इतना आजिज हो गया कि मैं इस जो है वो कव्वे के बराबर भी ना हुआ, इतनी मुझे समझ ना आई। फ़ुआद या सऊत आखी, कि मैं छुपा लूँ अपने भाई की लाश को। फ़असबह मिन नादिमीन, तो वो हो गया नदामत पाने वालों में से, नादिम लोगों में से हो गया। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी जान जब ज़ालिमाना तरीके से ली जाती है, किसी को कत्ल किया जाता है, तो आदम के पहले बेटे पर उसके गुनाह का एक हिस्सा पहुँचता है। क्यों पहुँचता है? लिअन्नहु अव्वल मन सन्नल कत्ल, कि उसने सबसे पहले कत्ल की सुन्नत जारी की। तो जो काबिल ने कत्ल की सुन्नत जारी की थी, क़यामत तक जो आदमी मजलूमाना मारा जाएगा उसके खून का एक हिस्सा काबिल तक गोया पहुँचता रहेगा। मिन अजली ज़ालिक, कहा इसी सबब से, ये जो इंसानों के अंदर एक मादा रखा गया है ज़्यादती करने का, एक दूसरे की जान लेने का, कतबना आला बनी इसराइल, हमने ये बात लिख दी, फ़र्ज कर दी बनी इसराइल पर, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज, कि जो कोई भी जान लेगा किसी की बग़ैर इवज के, यानी एक तो है जान के बदले जान लेना किसास में, वो जायज़ है, औ फसादिन फिल अर्ज, या कोई फसाद फिल अर्ज कोई आदमी कर रहा है उसको इंसान, उसकी जान ली जा सकती है, उसको मारा जा सकता है, फ़कअन नमा कतल अन्नास जमिया, तो गोया वो ऐसे है कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, यानी किसास में जान ली जा सकती है और जो फसाद मचाते हैं लोग उनकी जान ली जा सकती है, इसके अलावा जो नाहक किसी को कत्ल करेगा उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, वमन अहया फ़कअन नमा अहयन्नास जमिया, और जिसने ज़िंदा रखा है ज़िंदगी दी किसी को तो उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी दी, वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और बेशक तहकीक आ चुकी हैं, ले आए हैं उनके पास हमारे रसूल वाज़े निशानियाँ और खुले हुए हुक्म, सुम्मा इन्न कसीरन मिनहुम बाद ज़ालिक फिल अर्ज़ लमुसरिफून, और फिर बेशक इनमें से बहुत से लोग हैं जो इसके बाद भी ज़मीन में इसराफ़ करते हैं ज़्यादती करते हैं, इन्नमा जज़ा उल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूला, बेशक इसके सिवा कोई बदला नहीं है उन लोगों का कि जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से उसके रसूल से, वयसाउन फिल अर्ज़ फसादा, और ज़मीन में मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं फसाद मचाने की, अय युक़त्तलू कि उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू या उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, औ तुक़त्ता अईदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, यानी दायां हाथ और बायां पाँव या बायां हाथ और दायां पाँव इस तरीके से क्रॉस काट दिए जाएँ, औ युनफ़ाउ मिनल अर्ज़ या उनको ज़मीन से जिलावतन कर दिया जाए, ये फसाद फिल अर्ज़ की सज़ा है, वो लोग के जो ज़मीन में फसाद मचाएं बगावत करें अनादगी फैलाएं उनकी सज़ा बयान हो रही है, ज़ालिक लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये इस वजह से है कि उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है, वलहुम फिल आख़िरत अज़ाबुन अज़ीम और आख़िरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, सिवाय उनके कि जो तौबा कर लें रुजू कर लें इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, फ़ालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला, यानी अगर वो तौबा कर लें रुजू कर लें तो फिर उनको एमनेस्टी दे दो उनको माफ़ कर दो, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वबतगू इलैहिल वसीला और अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो, वसीला कहते हैं कुर्ब को, वजाहिदू फी सबीलिही और अल्लाह के कुर्ब को तलाश करने का ज़रिया क्या है उसके रस्ते में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फला पाओ, और वसीला वो मकाम महमूद भी है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला वो मुझे क़यामत में अता फ़रमाएंगे और तुम्हें चाहिए कि हर अजान के बाद मेरे लिए उसकी दुआ किया करो, इन्नल्लज़ीन कफ़रू लव अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ जमीअन व मिस्लहु माहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिन्हुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया अगर उनके पास सब कुछ हो जो ज़मीन में है, व मिस्लहु माहु और उसका मिसल और भी हो दुगना और भी हो, लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा और वो चाहें कि क़्यामत के दिन के अज़ाब के लिए बदले में उसको दे के अपने आप को बचा लें, मा तुक़ब्बिल मिन्हुम तो वो उनसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, यानी अगर दुनिया में कुफ़र किया है पैगंबरों का इनकार किया है तो क़्यामत के दिन जो है ज़मीन भर भी सोना देना चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनसे कबूल नहीं करेगा, और वहाँ ऐसे वाक़यात रिवायतों में बयान हुए कि वहाँ एक काफिर और मुशरिक कहेगा कि ऐ अल्लाह तू मेरा सारा माल ले ले सारा असबाब ले ले और ऐ अल्लाह तू मुझे बचा ले, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें दुनिया में इससे बहुत कम का मुतालबा किया था लेकिन वो तुमने पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे अब जाहिरी बात है कि इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, वलहुम अज़ाबुन अलीम और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, युरीदून अन यखरुजू मिनन नार व मा हुम बिखारिजीन मिन्हा, वो चाहेंगे कि निकल भागें जहन्नुम से लेकिन वो उसमें से निकलने वाले नहीं हैं, वलहुम अज़ाबुन मुकीम और उनके लिए ऐसा अज़ाब है जो ठहरने वाला है दायमी है, वसारिकु वसारिकतु फ़क़्तऊ अईदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत इन दोनों के हाथ काट डालो, ये बदला है उनकी उस कसब का, उनकी उस कमाई का जो उन्होंने किया, नकालम मिनल्लाह, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है, इबरत भी है। यानी जो इस्लामी सज़ाएँ हैं ये एक डेटरेंट भी होती हैं कि भाई किसी एक को दी जाए और दस लोगों को उससे जो है वो कान हो जाएँ और लोग उससे बच जाएँ। तो चोरी की सज़ा ये है। अब वो चोरी कितनी होनी चाहिए, उसकी हुदूद व कयूद क्या है, वो फ़िक्र में बयान हुई हैं। इसी तरह एक ख़ास मौके पर एक जो है फ़ातिमा नामी खातून थी मखज़ूमी कबीले की, उसने चोरी कर ली। अब कुरैश बहुत परेशान हो रहे थे कि अगर अल्लाह के नबी इस पर भी सज़ा नाफिस कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका कबीला बहुत जो है वो मज़बूत है। तो सिफारिश करवाई गई सैयदना उसामा से, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गज़बनाक हो गए और आपने उस मौके पर फरमाया कि ये तो फ़ातिमा दूसरी फ़ातिमा है, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ भी काट दूँगा। और पिछली कौमें इसी वजह से तबाह हो गईं कि उनमें जो है कोई कमतर, कोई जो है रजील, जब कोई चोरी करता था, कोई जुर्म करता था, उसको सज़ा दे दी जाती थी, और कोई बड़े कबीले का कोई आदमी सज़ा करता था तो उसको माफ़ कर दिया जाता था। नकालम मिनल्लाह, कहा कि ये इबरत के लिए है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व असलहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, और जिसने तौबा की जुल्म के बाद, ज़्यादती के बाद, और उसने इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या आपको नहीं मालूम कि बेशक अल्लाह ही का है, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फिरु लिमन यशाउ, वो जिसको चाहता है अज़ाब देता है और जिसको चाहता है उसको माफ़ करता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, आपको गमगीन न करें उन लोगों की भाग दौड़ के जो कुफ़्र जिन्होंने किया है ज़मीन में, उनकी भाग दौड़ आपको गमगीन न करे। मिनल लज़ीना क़ालू, उन लोगों में से जो ये कहते हैं, आमन्ना बि अफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, कि हम ईमान ले आए अपनी ज़बानों से जबकि उनके दिल ईमान नहीं लाए। ये वही जो यहूद थे और जो मुनाफिकीन थे, उनकी तरफ इशारा है। वमिन लज़ीन हादू, और उनमें से भी जो यहूदी हैं, सम्माउन लिल कज़िबी सम्माउन लिकौमिन आखरीन लम यातूक, ये जासूसी करते हैं झूठ बोलने के लिए, और ये जासूसी करते हैं ऐसे लोगों की कि जो आपके पास नहीं आते। ये जो मुनाफिकीन हैं ये आपके पास आते हैं यहूद के जासूस बनकर। युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बादी मवाज़ईही, और ये बदल डालते हैं बात को उसके ठिकानों से, उसके ठिकानों से हटाकर बात को बदल देते हैं, तहरीफ कर देते हैं। यकूलून इन ऊती तुम हाजा फ़खुज़ूहू, और ये कहते हैं कि अगर तुम्हें दिया जाए तो कबूल कर लो, हुक्म मिले, गनीमत मिले तो कबूल कर लो। वइल्लम तुतौहू फ़हज़रू, और अगर ये हुक्म न मिले, ये चीज़ न मिले तो फिर बचते रहना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहू फ़लन तम्लिक लहू मिनल्लाहि शैआ, और जिसको अल्लाह ताला ही इरादा कर ले कि उसको फितने में डालना है, तो ए नबी आप उनके बारे में अल्लाह के यहाँ कोई इख्तियार नहीं रखते। उलाइकल लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि इनके दिलों को पाक करें। क्यों नहीं अल्लाह ने चाहा? इस वजह से कि ये ख़ुद नापाक हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। लहुम फिद दुनिया खिज़्यूं व लहुम फिल आख़िरत अज़ाबुन अज़ीम, बेशक उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है और आख़िरत की ज़िंदगी में बहुत बड़ा अज़ाब है। सम्माउन लिल्कज़िबी अक्कालून लिस्सुहत, ये सुनते हैं, सुनने वाले हैं झूठ के, जासूसी करने वाले हैं झूठ बोलने के लिए। अक्कालून लिस्सुहत, और बहुत ज़्यादा हराम खाते हैं। फ़ैन जाऊ का फ़ाहकुम बैनहुम औ आरिज़ान हम, तो ए नबी जब ये आपके पास आएँ तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इनके दरमियान फ़ैसला कर दें, चाहे तो एराज़ कर दें। वइन तोरिज़ानहुम फ़लन यदुर्रू का शैया, और अगर आप इनसे एराज़ करेंगे तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। या उन्हीं मुनाफिकीन का तस्करा है जो यहूद में से थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये खेलते हैं और ये आपको फितने में डालने की कोशिश करते हैं। जब आप इनके हक़ में फ़ैसला करते हैं तो कबूल कर लेते हैं, जब आप इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं तो बातें बनाते हैं। तो आपको इख्तियार है, चाहे तो फ़ैसला करें, चाहे फ़ैसला न करें। वइन हकम तफ़ाहकुम बैनहुम बिलक़िस्त, हाँ जब आप इनके दरमियान को फ़ैसला करें तो फिर अदल व क़िस्त, इंसाफ के साथ फ़ैसला कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। व कैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह, और ए नबी आपको कैसे हकम बनाते हैं जब इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद, یعنی تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، شریعت موجود ہے، تحریف کے باوجود بہت سے احکامات موجود. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ پیغمبر کہ جو حکم بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے. والربانیون والاحبار، اور جو ان کے درویش لوگ ہیں، ربانی ہیں اور ان کے عالم ہیں، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس بنیاد پر کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ اس پر گواہ تھے. یعنی یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے قرآن مجید میں اور تورات اور انجیل اور پچھلی کتابوں میں، کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے علماء کے ذمہ لگائی تھی، لیکن جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تو کہا کہ یہ جو ہے ربانی اور احبار بھی فیصلے کرتے ہیں. فلا تخشوا الناس واخشونی وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو اے مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیات کو تھوڑی مول کے عوض بیچو نہیں. تھوڑی مول کا مطلب ایک دو چار لاکھ نہیں ہے، بلکہ زمین بھر بھی مال اگر دے دیا جائے تو وہ اللہ کی ایک کتاب کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں ہے. تو کہا کہ میری آیات کو تھوڑے مول کے عوض بیچو مت. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. اللہ نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ کافر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر کتاب میں. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، ہم نے طے کر دیا تھا ان کے لیے کتاب میں کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ، یعنی قصاص ہوگا، ہر عضو کے مقابل میں اس کا عضو جو ہے وہ لیا جائے گا. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، اور جس کو معاف کر دیا گیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یہ اس کو پاک کر دے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو. مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو ان کے سامنے موجود تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو اس کے آگے تھی، یعنی تورات کی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی اور واعظ تھی، موعظت تھی متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، حکم نہ دے، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اب یہاں تین فتوے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم مطابق فیصلے نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اپنے سماج میں، اپنی ریاستوں میں اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو یہ تین فتوے ہم پر بھی عائد ہوتے ہیں، ہم پر بھی لگتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے اب آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان سابقہ کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وہ مہیمنن علی، اور اس پر محافظ ہے، اس کے مضامین پر نگہبان ہے. اب پرانی کتابیں ہیں، ہم ان پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، سیدنا مسیح علیہ السلام پہ جو ہے وہ انجیل نازل کی. لیکن اب ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ان کی بھی جو کتابیں ہیں پرانی، اس میں سے اس حصے کو ہم مانیں گے جس پر قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کو قرآن مجید انڈوس کرتا ہے. تو یہ مہیمن ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے کہ آپ جو حق آپ لے کر آئے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور بھی مقرر کر دیا اور ایک راہ بھی مقرر کر دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک دین پر ہی کر دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جانچے اپنے احکامات کے ذریعے جو اس نے تمہیں دیے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ہر اس معاملے میں، تمہیں باخبر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ متنبع رہیے. اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے اس میں سے کسی حصے سے یہ آپ کو بہکا نہ دیں. یہ تو آپ کو برائب کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تو چاہیں گے گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کمپرومائز کر لیں. تو آپ بہت متنبع رہیں، ان سے بچ کے رہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر یہ روگردانی کریں، اعراض کریں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں پہنچا دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو، کفر کا حکم چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ کے جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم کرنے والا کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو اہل کتاب ہیں یا غیر مسلمین ہیں ان کے ساتھ دنیاوی طور پر معاملہ کیا جا سکتا ہے، مدارات بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن دلی تعلق، دلی دوستی ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اور جو کوئی بھی ان سے دلی تعلق رکھے گا، ولایت کا تعلق رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اندر ہی گھسے رہیں اور انہی کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے وہ بتاتے رہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں ایک بیماری ہے، روگ ہے. یسارعون فیہم، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم دونوں فریقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم ظاہر کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہیں اس کی بنیاد پر پچھتانے لگیں گے، ندامت کا اظہار کریں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال عکارت ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے. یحبہم ویحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اذلتن علی المؤمنین، جو بہت نرم ہیں، بچھے ہوئے ہیں اہل ایمان کے سامنے. اعزتن علی الکافرین، چڑھے ہوئے ہیں، زبردست ہیں کافروں پر. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، और इस मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से अंदेशा नाक नहीं होते। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहता है अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वसत वाला इल्म वाला। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों, जो कोई भी तुम में से अपने दीन से पसपाई इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ले आएंगे जिनके ये औसाफ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी खिदमत से महरूम ना करें, हमें जो है पीछे ना कर दें, तो हमें ये औसाफ अपनाने हैं। वो औसाफ क्या हैं? वो औसाफ ये हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, और अहले ईमान के आगे बिछे हुए हैं। वो जो आगे आएगा ना, अशिद्दाउ अदल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कुफार पर बहुत सख्त हैं, बहुत मजबूत हैं, आपस में इंतहाई रहीम है, इंतहाई शफीक है, और ये क्या करते हैं? अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, मेहनत करते हैं, किताल करते हैं। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युकीमूनस्सलात वयूतूनस्ज़कात वहुम राकिऊन, बेशक तुम्हारा असल वली, तुम्हारा हकीकी कारसाज़ तो अल्लाह है और उसके रसूल हैं, और वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, अल्लज़ीन युकीमूनस्सलात, जो नमाज़ कायम करते हैं, वह यूतून ज़क़ात, और ज़क़ात देते हैं, वह हम राकिऊन, और आजजी करते हैं, आजजी के साथ जो है वो अल्लाह के सामने झुके रहते हैं। वमई यतवल्लल्लाह व रसूलह, और जो कोई भी दोस्त रखेगा अल्लाह को, उसके रसूल को, वल्लज़ीन आमनू, और अहले ईमान को, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, तो बेशक अल्लाह की जमात ही सब पर ग़ालिब। इसमें महज़ूफ़ क्या है कि जो अल्लाह उसके रसूल की से विलायत रखता है और अहले ईमान को अपना दोस्त रखता है, वही असल में अल्लाह की पार्टी है, और अल्लाह की पार्टी ही गालिब रहेगी। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लईबन मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ार औलिया, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों को अपना वली न बनाओ जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को खेल तमाशा बना लिया, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी तुमसे पहले, और कुफ्फार, यानी वो लोग के जो काफिर हैं, और वो लोग के जिनों जो जिनको किताब दी गई और जो तुम्हारे मुखालिफ हैं और जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना लिया, उनको अपना दिली दोस्त ना बनाओ। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, और देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लईबा, और ऐ नबी, जब और ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो ये लोग इसको हंसी ठट्ठे का मौजू बना लेते हैं, खेलते हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुल ला याक़िलून, इस वजह से है कि ये वो लोग हैं जो अक़ल से काम नहीं लेते। कुल या अहलुल किताब, ए नबी फरमा दीजिए अहले किताब, हल तनकिमून मिन्ना, क्या तुम्हें हमसे इस बुनियाद पर ज़िद है, तुम हमसे इसलिए इंतकाम लेते हो? इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, मगर इस वजह से कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ हमारी तरफ उतारा गया उस पर ईमान लाए, और हम ईमान लाए उस पर जो इससे पहले नाजिल किया गया। वअन्ना अक्सरकुम फासिकून, और बेशक तुम्हारी अक्सरियत नाफरमान है। कुल हल उनब्बियुकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, ए नबी फरमा दीजिए क्या मैं तुम्हें ना बताऊँ कि इससे बुरी चीज़ क्या है बदले के तौर पर जो अल्लाह के पास है। मन लानहुल्लाह, वही जिस पर अल्लाह ने लानत की, व ग़ज़िब अलैही, और उस पर अल्लाह का ग़ज़ब नाजिल हुआ, व जाल मिन्हुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर व अबद तागूत, और अल्लाह ने उनमें से बाज़ों को बंदर बना दिया और बाज़ को सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की पैरवी की, तागूत की पैरवी की, यानी वो यहूद की तरफ इशारा है। उलाइक शर्रुम मकानों व अदल्लु अन सवाय सबील, वही लोग हैं कि जो बहुत बदतरीन दर्जे पर हैं और सीधी राह से बहुत दूर बहके हुए हैं। वइज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना, और ये वो लोग हैं जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वक़द दखलू बिलकुफ़री वहम कद खरजू भी, हालांकि वो कुफ़र ही में इस्लाम में दाखिल हुए थे और उसी में निकले, यानी ये वो मुनाफिकीन हैं जो अहले किताब में से थे, यहूद में से थे, जो आकर ईमान के दावे करते हैं। कहा कि ये एक लम्हे के लिए भी कभी मोमिन नहीं हुए, जब दाखिल हुए थे उस वक्त भी काफिर थे, जब निकले थे उस वक्त भी काफिर थे। वइज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना, और जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वक़द दखलू बिलकुफ़री वहम कद वइज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना वक़द दखलू बिलकुफ़री वहम कद खरजू भी वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ के तुम छुपाते हो। व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वानी व अक्लिहिम उस्सुहत, और आप देखेंगे इनकी अक्सरियत को कि ये भाग दौड़ करते हैं गुनाह के कामों में और सरकशी के कामों में और हराम खाने में, लबिस मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा काम है जो ये करते हैं। लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार, क्यों नहीं मना करते उनको उनके अल्लाह वाले, उनके दरवेश और उनके उलमा, यानी उनके उलमा और सूफिया उनको मना क्यों नहीं करते। अन कौलिहुमुल इस्म व अक्लिहुमुस सुहत, ये गुनाह की बात करने से और हराम खाने से। लबिस मा कानू यसनाउन, बहुत ही बुरा अमल है जो ये कर रहे हैं, यानी उनके अहबाब और रुहबान, उनके उलमा और सूफिया ये काम क्यों नहीं करते। वकालतुल यहूद यदुल्लाह मगलूला, और ये यहूद कहते हैं कि ये जो अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के हाथ बंद गए हैं। यानी माज़ल्ला, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से महरूम कर दिया है, और जिस तरह आगे जाकर कहेंगे कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो कहते हैं यहूद के अल्लाह फ़कीर हैं और हम गनी हो गए हैं, तो कहा कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंद हो गया है। गुल्लत अईदीहिम, बंद हो जाएँ उनके हाथ। व लुइनू बिमा कालू, और उनके इस कहने की के सबब उन पर लानत की गई। बल यदाहु मबसूततान युन्फिकु कैफ यशा, बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, जैसे चाहता है खर्च करता है। क्योंकि उनको रहमत से महरूम कर दिया गया, उनको आखिरी नबूवत और रिसालत से महरूम कर दिया गया, तो उन्होंने अल्लाह पर तोहमत लगा दी माज़ल्ला, कि अल्लाह ताला के हाथ बंद गए। वले अजीदन कसीर मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिका तुग़यानं व कुफ़्रा, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो हम उतारते हैं नबी आपकी तरफ, वो उनमें बढ़ा देता है सरकशी और कुफ्र। यानी चाहिए तो ये कि हम आप पर कुरान नाजिल कर रहे हैं, इसके ज़रिए उनकी हिदायत में इजाफ़ा हो, फरोतनी में इजाफ़ा हो, लेकिन होता उल्टा है, वो सरकशी में और कुफर में बढ़ते चले जाते हैं। वालकीना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा, और हमने डाल दी है इनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ क़्यामत के दिन तक। कुल्लमा औक़दू नारल लिल हर्बि अतफ़ा अल्लाह, और जब जब ये कोई आग भड़काते हैं जंग की, अल्लाह ताला उसको बुझा देता है। ये यहूदी ये चाहते हैं कि जंग हो, बार बार फितने भड़काते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसको जो है बुझा देता है। वयसऊन फिल अर्ज़ फसादा, और वो ज़मीन में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं फसाद मचाने की। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, और अल्लाह ताला ऐसे फसादियों को पसंद नहीं करता। वलौ अन्ना अहलुल किताब आमनु वत्तकौ, और अगर अहले किताब ईमान लाएँ और तकवा की रविश इख्तियार करें, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, तो हम दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को। वलअद खलनाहुम जन्नात नईम, और हम उनको ज़रूर दाखिल करेंगे नेमतों वाले बागात में। वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम, और अगर ये कायम करें तौरात को और इंजील को और जो कुछ नाजिल किया गया उनकी तरफ उनके रब की तरफ से, लअकलू मिन फौकिहिम, तो वो खाएँगे अपने ऊपर से भी, वमिन तहति अर्जुलिहिम, और अपने पाँव के नीचे से भी। यानी अगर ये तौरात और इंजील को नाफिस करते तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। और ये आयत गोया आज हमसे भी मुखातब है कि हम अहले कुरान हैं, अगर हम अल्लाह की दी हुई किताब को नाफिस करें, उसके अहकामात को जो है अपने समाज पर भी, अपनी रियासत पर नाफिस करें, तो अल्लाह ताला की बरकतें ज़ाहिर होंगी। मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, उनमें बाज़े ऐसे हैं कि जो सीधी राह पर कायम हैं। व कसीरुम मिनहुम सा मा यामलून, लेकिन इनकी अक्सरियत वो है कि जो बहुत ही बुरे काम करती है। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र अल हकीम।